है
जी
जी
जी बिल्कुल,
मैं इसको भी पास रखता हूँ। उसका पर्सपेक्टिव है शेयर होल्डर वैल्यू, यानी इन अदर लूजली स्पीकिंग प्रॉफिट्स, बिजनेस वाले को प्रॉफिट चाहिए, वो कहता मेरा कारोबार कैसे बेहतर कर सकते,
बिल्कुल
ठीक है। तो उसको पहले ये पता नहीं होता कि आईटी किसी सेंस में मेरी हेल्प कर सकता है। सो टेक अ रिटेल बिजनेस फॉर एग्जांपल, दुकान है किसी की, तो अभी उसको ये अंदाजा नहीं है कि अगर मैं पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगा दूँ, मैं कंप्यूटर रख लूँ जिससे रसीदें प्रिंट हुआ करें, तो इससे मुझे मेरे बिजनेस को कोई फायदा हो सकता है। उसने कंसीव ही नहीं किया ना, ये आइडिया ही नहीं उसके दिन में आया, ठीक है। तो पहली स्टेज तो ये है कि उसको अवेयर किया जाए कि ही हैज अ प्रॉब्लम दैट आईटी कैन हेल्प सॉल्व, ठीक। तो ये अवेयरनेस स्टेज के हमारे कॉन्टेंट है। इसमें आप सोच लो कि आप उसको ये तो बता सकते हैं कि जी अगर आप पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगा लें तो उससे आपकी चोरी में इतना प्रतिशत कमी आ जाएगी जिससे आपको इतना फायदा होगा। अगर आप पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगा लें तो आपको स्टॉक खत्म होने से पहले पता चल जाएगा कि वो खत्म हो गया है, आपको ये पता चल जाएगा कि जब कोई ये खरीदता है तो वो भी खरीद सकता है साथ, और किस मौसम में किस चीज़ की नीड ज़्यादा होती है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए ये फ़ायदे हैं, मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ उससे आपको ना हुआ। एक तो अप्रोच ही हो सकती है, दूसरी हो सकती है आपके मैंने जैसे देखिए सारे ने लाए हैं, आप जिस दुकान में जाए हैं ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेल लगा आप लगाया तो पिछड़े हुए, तो ये बताते खुद एक ट्रिगर होता है लोगों के लिए
कि कंपटीटर का जैसे देखे तो
हाँ इंडस्ट्री जो ट्रेंड है ना वो कॉन्टिन्यूसली लोग फॉलो करते हैं। अगर आप ये अवेयरनेस की चीज़ें देखोगे तो उसमें यही है, फाइव साइन दैट यू नीड अ दिस, फाइव साइन दैट यू नीड अ दिस मींस के फाइव साइन यू नीड अ बेस्ट स्टॉक सॉल्यूशन फॉर एक्चुअली। उस वक्त अब बेस्ट स्टॉक नहीं कहेंगे क्योंकि बेस्ट स्टॉक तो अभी आया ही नहीं, आप अभी ये बता रहे हैं कि आपको इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपके ये वाले दो सिस्टम जुड़ जाए तो आपको कितना फायदा हो सकता है। ये अवेयरनेस स्टेज की आपकी इंपॉर्टेंस चीज है। सो
अभी अभी हम साथ ही ये भी चीज क्लियर कर देते हैं कि व्हेन यू टॉक अबाउट रिटेल शॉप, तो आई थिंक मैं चाहूंगा कि ज्यादा प्रिसाइज हो जाए, हम किसको टारगेट करते
हैं, हम किसी इंडस्ट्री को टारगेट नहीं करते। मैंने तो आपको एज एन एग्जांपल रिटेल बताया, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट नहीं करते,
ठीक
है। हमारे सॉल्यूशन जनरली काफी ब्रॉड बेस्ड होते हैं, स्टॉक आप रिटेल में भी लगा सकते हैं, बैंक में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा लेते हैं, उसका इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है,
ठीक है। और मतलब लेकिन स्केल का तो मेरे ख्याल से ताल्लुक होता होगा, कि इसका यार देखो सर ये एक बड़ा स्टोर है, ठीक है, या चार पांच स्टोर है ये प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं है तो वो मान लीजिए एक टारगेट है, या बिल्कुल उसका स्केल भी तो मैटर करता है, मान लीजिए या नहीं
साइज का और क्या है स्केल से बना साइज कंपनी साइज की बात कर रहे हैं,
साइज
स्मॉल मीडियम को टारगेट करते हैं। अगर जैसे सॉल्यूशन हम अभी भी हम 90% क्लाइंटेल हमारी लार्ज में आती है, लेकिन वो सब कॉन्ट्रैक्टेड काम है,
ठीक है। तो मैं कंसल्टेंट से
जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें परचेसिंग साइकिल डिफरेंट होता है, और जो स्मॉल एंड मीडियम है उसमें डिफरेंट होता है। इन स्टेजेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारी गुजरते हैं, दोनों सब स्टेजेस में से गुजरते हैं, लेकिन लार्ज एंड मीडियम लार्ज एंटरप्राइज के पास चॉइसेस बहुत ज्यादा है, उनकी कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा
है, इंटीग्रिटी ज्यादा है।
मतलब मसलन बैंक ऑफ अमेरिका का जो हेड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो मेरा क्लास फेलो है, ठीक है। मेरी उससे परसों बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि यार हमारी तो पॉलिसी है कि हम आउटसोर्स नहीं कर सकते टू एनीवेयर अदर देन इंडिया, वहाँ पे हमारा अपना ऑफिस है, तो वहाँ उधर फंस जाते हैं, पाकिस्तान के फिर वो इकोनॉमिक हालात और सब कुछ है ना वो उसको रोक रहा है। स्मॉल एंड मीडियम इज हायर, देयर मोर विलिंग टू टेक रिस्क एंड देयर लेस स्ट्रक्चर्ड, तो वहां भी हॉच पॉच का प्रॉब्लम है, हर चीज की
छोटा
हर चीज की किताब नहीं बनी हुई। हां
अच्छा ठीक है,
तो हम स्मॉल एंड मीडियम टारगेट
मिल स्मॉल एंड
मीडियम, बाय स्मॉल एंड मीडियम आई मीन अप टू $200 million रेवेन्यू। बहुत सारी कंपनियां हैं,
ठीक हो गया। अब ये तो एक उसको इंटीग्रेशन का पता नहीं है, उसको बेनिफिट्स अवेयरनेस के अंदर आ गए वो हो गए हैं,
एग्जैक्टली। यहाँ पे हमारे जो पर्सोनाज है ना,
वो
उनमें तीन पर्सोनाज आते हैं। एक आपका आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर का पर्सोना, अगर आपने देखा होगा, सीआईओ हो गया, वीपी हो गया आईटी का, या प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, और एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट का पर्सोना है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट बेसिकली होता है जैसे वो एचआर का कंसल्टेंट है ना, वो जाके लोगों को बताएगा कि आप अपना एचआर प्रोसेस कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम उसको ये बताना चाहते हैं कि क्या पता है कि आपके क्लाइंट्स को फायदा हो सकता है अगर वो आईटी एचआर सिस्टम लगा लें।
और जैसे हर ये सॉल्यूशन में ज्यादा सॉल्यूशन में आईटी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है।
हर बिजनेस वैल्यू हर फंक्शन में आईटी कोई ना कोई हेल्प करती है आपकी। अगर आप हमारे सॉल्यूशन डायरेक्टली देखोगे ना, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि अच्छा एचआर में क्या चीज़ हेल्प कर सकती है, या रिटेल इंडस्ट्री में कौन सी हेल्प कर सकती है। तो बाय इंडस्ट्री भी जा सकते हो और बाय फंक्शन भी जा सकते हो। फंक्शन से मुराद है एचआर, फाइनेंस, आईटी बता तो खुद एक फंक्शन है, ऑपरेशन, ये सब फंक्शन है, हर कंपनी में होते ही होते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है।
लेकिन उनको मिला के फिर आप करते हैं क्या, ये इंडस्ट्री है।
बिल्कुल ठीक है, ऐसे ठीक हो गया।
ठीक हो गया, तो आपने इसको अवेयर कर दिया। देखिए आपका तो असल मसला ये है कि आपको तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम चाहिए। उसको अपनी एग्जाम्पल पे चलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम चाहिए आपको। अब आ गए आप कंसिडरेशन के, यानी कि कंसिडरेशन एंड प्लानिंग से हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो कभी आप खुद रिसर्च करते हैं, कभी आप कुछ आप फोटो लेते हैं जो आपके लिए ये कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट अगेन एक तो ये कि हम उनको एजुकेट करें और हम दिस प्रोडक्ट वर्सेस दिस डॉग वर्सेस स्टर्लिंग कॉमर्स, एक प्रोडक्ट है जो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट है, दिस डॉग वर्सेस दिस, दिस डॉग वर्सेस आईबीएम, दिस डॉग वर्सेस फलाना, ये हम चीज़ें दे सकते हैं। उसको कंसिडरेशन में हेल्प होगी। और दूसरी हम उसको जो है उसको टारगेट कर सकते हैं जो जिसको बुलाया जाएगा मुशावरत के लिए। मैंने कहा इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, इसे नहीं यार बंदा बुला लो, उसको बताओ तीन सारी बातें, वो बता देगा। इफ यू आर अ स्मॉल वेंडर, स्मॉल मीडियम में अगर जब स्मॉलर साइड पे हो, तो आप कहते हो यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के दिस टॉक के सारे फॉर्म वो सब लोग मैं भाई को बुला लेता हूँ। इसी स्टेज पर यार कंसल्टेंट होना शुरू हो जाते हैं। वेरी गुड। लार्जर ऑर्गेनाइजेशन जैसे नहीं यार हमारे साथ हैंड ना हो जाए, हमारे तो प्रोसेस हमारे सेटअप है, तो हम बंदा रखेंगे इन हाउस, हमारा आईटी का ये मैनेजर साहब है या ये आर्किटेक्ट साहब है, इनको टास्क दिया जाएगा कि हम आप जाए हम जाके ये
प्रोक्योर कर लेंगे।
तो आप आगे कंसिडरेशन स्टेज में यहाँ पे आपके पास जो कंटेंट है वो है एक प्रोडक्ट कंपैरिजन का है। हाँ सर, ये इवैल्यूएशन स्टेज में से गुजर के आपने चुन लिया आप डेस्कटॉप, ठीक है। अब आपने तैयारी शुरू की कि यार अच्छा डेस्कटॉप तो ठीक है, लेकिन लगाने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है। तो आप कहते हैं जैसे सर्वर लेना है, कितना बड़ा फ्रीम है यार, उसकी कितनी कॉस्ट होगी, तो कितने किस्म के बंदे चाहिए होंगे मुझे उसको चलाते रखने के लिए, तो अच्छा फिर सोल्यूशन बनाने के लिए और क्या कुछ चाहिए होता है। तो ये प्लानिंग की स्टेज है आपकी, जहाँ आप देख लें कैपेसिटी प्लानिंग कहते हैं। किसी भी जब आप सिस्टम नया बना रहे होते हैं ना, तो आप कैपेसिटी की प्लानिंग करते हैं। ऐसे आप लेट से अगर ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ही लगा रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि जी मेरे एक दिन के 50,000 ट्रांजैक्शन होते हैं, 50,000 चीजें बिकती हैं, तो क्या आपका सिस्टम हैंडल कर लेगा। अगर बढ़ गई तो फिर क्या करेगा, अच्छा 5 साल बाद कितनी होगी, तो तब भी ये कर लेगा हैंडल, तो ये स्केलेबल है, इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, इसकी ये डम पटम वो आर्किटेक्चरल चीज़ें हैं ये सारी।
और ये डेफिनेटली कोई टेक्निकल बंदा आपसे,
सेमी टेक्निकल होता है वो, आधा बिजनेस और आधा टेक्निकल आर्किटेक्चर, इसको आर्किटेक्ट कहते हैं इसको हमारे यहाँ।
अच्छा,
तो इसके लिए रोल है ना वो आर्किटेक्ट कहलाता है,
ठीक है।
वो आधा बिजनेस समझता है और आधा टेक्नोलॉजी, वो एग्जैक्टली नहीं बताता कि कैसे करना है, लेकिन वो ये बता देता है कि बिज स्टॉक लगाना है, उसके साथ दो सर्वर लगाने हैं, कितनी मेमोरी होगी, जब ये कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो तीसरा सर्वर यूँ इस तरह से साथ इसके लग जाता है। मैंने चेक कर लिया कि लग जाता है, कैसे लगेगा किसने लगाना है वो मेरी बता, लेकिन मुझे ये पता है कि लग जाता है। सो आपकी जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है ना वो इससे पूरी हो जाएगी। ये मैंने आपको कर दिया,
ये प्लानिंग फेज।
ये प्लानिंग फेज होता है, कई दफा हम स्टैगर भी कर देते हैं, स्टेजेस बना देते हैं कि देखिए बहुत सारा काम होने वाला है, तो पहली स्टेज में जाना ये पॉइंट ऑफ सेल लगाया जाएगा, दूसरी स्टेज में फिर हम इन्वेंट्री इसके साथ जोड़ देंगे, तीसरी स्टेज में हम परचेजिंग भी इसके थ्रू किया करेंगे, तो इस तरह ये है ना 5 साल में आप बिल्कुल ऑटोमेटिक एक जबरदस्त दुकान बन जाएगा। तो ये आर्किटेक्ट होते हैं। तो ये आप चलते चलते आर्किटेक्ट स्टेज पे आ गए। अब वो आर्किटेक्ट है वो 6 6 महीने के ना प्रोजेक्ट निकाल देता है तकरीबन, 6 महीने साल से बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता हमारे यहाँ, तो वो आपको स्कोप निकाल देगा स्पेसिफिकली कि जी आज शुरू करना है, जून तक हमने 15 दुकानें जो है वो ऑनलाइन करना है सिस्टम से।
ठीक है,
अब वो ये टास्क कार्व आउट कर देता है, इसको कहते हैं स्कोप,
ठीक है,
और वो एक क्लियर स्कोप ऑफ वर्क जो है ना उसको डिफाइन कर देता है।
बिल्कुल फेजेस उसके डिफाइन कर देते हैं कि इस फेज में ये होगा, अल्टीमेट में होगा कहाँ जाओगे। बिल्कुल
ठीक है, ना सिर्फ वो फेजेस डिफाइन कर देता है बल्कि वो स्कोप भी डिफाइन कर देता है ना,
स्कोप में जैसे आप कह रहे हैं कि फिलहाल हम
कि 25 दुकानें हैं, फलाने वाली शामिल होगी, ये चीज़ें नहीं शामिल होगी, ये बेसिस होती है बिडिंग की। जब हम जब वेंडर बुला रहे हैं ना, जब हमें इनवाइट किया जाता है ना, तो वो इस स्टेज पे किया जाता है, वो कहते हैं जी अब प्रोजेक्ट पे आ रहा है, अब हमें सिर्फ बनाने वाला बंदा चाहिए, ठेका इसे कहते हैं ना हमारे आम जबान में, ठेका दे लगे टेंडर इशू हो गया, RFP बन गया, टेंडर इशू हो गया, उसमें एग्जैक्टली पता है क्लाइंट को कि अब उसने करना क्या है। ठीक है, तो वो इस स्टेज पे हमें बुलाया जाता है, हम बेसिकली डेवलपमेंट और टेस्टिंग और रिलीज उस पे तो आपसे ये सब चीजें रिलेटेड है, यहाँ लड़के बैठे वही लिखते रहते हैं, उसी पे बोलते रहते हैं, तो आप जब भी उनसे कुछ डिस्कस करोगे लिखोगे ना, वो इन मेरी भी इसी कदम नहीं आए, पहली बार ये करते नहीं है तो वो लिखते भी नहीं।
डेवलपमेंट होंगे, टेस्टिंग में होंगे,
हाँ अब वो बात कर रहा है कि जब मैंने वेस्टॉक इंस्टॉल किया तो फलानी एरर आ गई, तो उसका यही इलाज है। अब इस पे भी हम लिखते हैं क्योंकि इससे हमारी वेस्टॉक से एसोसिएशन इंटरनेट पे बढ़ती है, और कई दफा ये भी होता है कि लेट स्टेज में जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, किसी का डेवलपर बीच में छोड़ गया, या पहले प्रोजेक्ट पे डेवलपर से कुछ नहीं था, वो दूसरे के लिए ढूंढ रहा है, तो हम एक विजिबल स्टेट में आ जाते हैं। सो हम अगर आप सोचो ना कि हम अगर वैसे अगर हम यहाँ टारगेट करें लेट स्टेज में, तो हम लेट हो गए, प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया, वहां को बैठे हैं, उसे कर रहा है, उसको करने में प्रॉब्लम आई है, तो अब वो हमारे पास आ रहा है, तो तब तो पहले देर हो चुकी है, उसको तो रख ही लगाना। सो वेयर लेट इन द गेम इफ वी टारगेट इन दिस, बट दिस इज द मोस्ट नेचुरल कंटेंट वी कैन प्रोड्यूस ऑडली,
अभी काम यहां ही हो रहा है,
बट इट इज लेट फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव, इट इज लेटर देन इट शुड बी, इट शुड हैव बीन अर्लियर ऑन कि हम फोकस रखते हैं अपना। सो आई थिंक यहां पे भी जो कंटेंट है ना उसको रेट्रोफिट करके पीछे ले जाना चाहिए। जैसे अगर
आप इसको आप अगर मुझे देंगे कैसे आप
जैसे मसलन मैं एक बंदे के पास गया हूँ, वो मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, बेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अच्छा क्या चल रहा है आजकल, वो बताएगा स्पेसिफिकली ये मैं अपना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अच्छा मेरे साथ बैठो जरा मुझे ये बताओ कि बेस्ट ऑफ की परफॉर्मेंस जो है ना ठीक करने के लिए क्या मसाइल आते हैं। तो मैंने प्लानिंग स्टेज का एक आर्टिकल लिखना है कि कोई 10 टिप्स टू इम्प्रूव 10 टिप्स फॉर बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस प्लानिंग। तो यार बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस प्लानिंग फॉर द मंथ आज जो पे टेंटेस डाल रहे
हैं, बिल्कुल मतलब 10 है 5 है जो जनरली आप अगर कार्ड आउट कर सकते हैं।
और जस्ट